साथियों नमस्कार, आप सुन रहे हैं मोबाइल वाणी। मोबाइल वाणी के लिए मैं दिनकर पातुलकर। आज मोबाइल वाणी के मंच पर हमारे साथ जुड़ रहे अधिवक्ता मधुकर गायकवाड़ सर। नमस्कार सर जी।
हाँ नमस्कार सर। नमस्कार
सर, हम आपसे आगामी विधानसभा चुनावों में मातृशक्ति को साधने की कोशिश सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही कर रहे, ऐसा समय में हम आपसे जानना चाहते कि जहां सत्ता पक्ष ने लाडली बहना योजना की शुरुआत की, वही विपक्ष ने नारी सम्मान योजना की बात करी है, इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे?
देखिए सर, बात सत्ता और विपक्ष की नहीं है, बात नारी के सशक्तिकरण के पक्ष को उजागर करने की है। पिछले 18 साल में या उसके पहले की व्यवस्था को देखे, चाहे वो जो सरकार सत्ता में रही हो चाहे विपक्ष में रही हो, लेकिन सबसे बड़ा परिवर्तनकारी बिंदु 2024 के चुनाव के लिए हो रहा है कि उन्होंने मातृशक्ति को साधने का प्रयास किया है और सबसे बड़ा आधार उन्होंने आर्थिक ढूंढा है। क्योंकि हालांकि अभी मध्य प्रदेश सरकार की जो प्रति व्यक्ति आय है वो 1,40,000 हो चुकी है, मध्य प्रदेश गरीबी राज्यों से निकल के बाहर आ गया है, लेकिन आप इस बात पे ध्यान दीजिए कि 7,25,00,000 की आबादी में आधा हिस्सा मातृशक्ति का है। और मातृशक्ति एक ऐसा बिंदु होता है राजनीतिक व्यवस्था के लिए कि वो अपने साथ साथ पूरे परिवार को व्यवस्थित करने का प्रयास करता है। और ये राजनीति का एक बहुत बड़ा पैतरा है कि उन्होंने महिलाओं को साधने का प्रयास किया। अब आप बताइए, सत्ता पक्ष लाडली बहना योजना चला रहा है, विपक्ष कह रहे कि हम यदि आ गए सत्ता में तो नारी सम्मान योजना हम लोग 1,500 रुपया देंगे। मुझे ये बताइए, अभी पंजाब सरकार की स्थिति देखिए, उन्होंने इस तरह की लोक लुभावन योजनाओं के माध्यम से इतना कर्जा ले लिया था कि सबसे अमीर राज्य आज गरीबी और बेरोजगारी की स्थिति में आ गया है। तो क्या मध्य प्रदेश को फिर से इस तरह की योजनाएं लाके सत्ता पक्ष या विपक्ष फिर से बेरोजगारी गरीबी की श्रेणी में लेना चाहता है? क्योंकि आप देखिए, आप जब आप सुविधाएं दे रहे हैं तो सुविधाएं दोगे तो उसके लिए राशि आवंटन के लिए आपको राशि जमा करना पड़ेगा, राशि इकट्ठा करना पड़ेगा, तो आप कहाँ से लाएंगे? इस तरह से मैं तो कहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट या जो विधायिका में ऐसे कोई कानून बनाना चाहिए कि एक लोक लुभावन देने वाली व्यवस्था को बंद कर देना चाहिए। आप आश्रित व्यक्ति को 1,000 या 1,500 रुपये दे के उसको अपने ऊपर आश्रित कर रहे, आप ऐसी व्यवस्थाओं का निर्माण क्यों नहीं करना चाहते कि जिससे संबंधित मातृशक्ति को रोजगार मिले, वो स्वयं के पैरों पे खड़ी हो। बहुत बड़ा हिस्सा समाज का ऐसा है कि जिनके पास आर्थिक सक्षमता नहीं है, ठीक है आपके 1,000 रुपये से उसको एक सहायता मिलेगी, लेकिन आपने उनको उज्ज्वला योजना के अंतर्गत सिलेंडर दिया जो 1,100 रुपये का आता है, उनके बच्चों के फॉर्म भरने की जो फीस लगती है वो 500 रुपये लगता है, आप स्कूलों में एडमिशन ले रहे हो, सरकारी स्कूलों की हालत आपको पता है क्या है, आपने प्राइवेट स्कूलों को बढ़ावा दे रहे, वहाँ प्राइवेट स्कूलों की फीस क्या है? अभी देखिए KG1 KG2 के जो बच्चे हैं 15-15, 20-20 हज़ार रुपये वार्षिक फीस है, जाने आने का खर्चा आप कहाँ से देंगे साहब? एक गरीब, मतलब यहाँ तो हम ऐसे भारत का निर्माण कर रहे हैं, एक तरफ इंडिया होगा एक तरफ भारत होगा, तो भारत मतलब वो जो 73% आबादी वाला क्षेत्र होगा जहाँ गरीब रहते हैं, इंडिया वो जो सारी सुख सुविधाओं से संपन्न क्षेत्र होगा उसको इंडिया कहेंगे। आप इस तरह से एक व्यवस्था का निर्माण करके विभाजनकारी तत्वों को बढ़ावा दे रहे हो, आपको ये लोकलुभावन व्यवस्था को दूर करना चाहिए, इससे हमारी अर्थव्यवस्था पे आघात होता है। और कई अर्थशास्त्री इस संदर्भ में कह चुके कि इस तरह के लोकलुभावन नारों को बंद करना चाहिए। पिछले बार जो विपक्ष में जो अभी सरकार है उन्होंने किसानों को कर्जा माफी की बात कही थी, कितने लोगों का कर्जा माफ हुआ है ना? आप देखिए पंजाब, ये सबसे बड़ा उदाहरण है हमारे सामने कि आज उसकी हालत क्या है। क्या हम मध्य प्रदेश को फिर से एक बार उस और ले जाना चाहते? आप तात्कालिक फायदा मत दीजिए, दूरगामी परिणाम के ऊपर विचार करिए। और सबसे बड़ी बात, महिलाओं के सम्मान की आवश्यकता नहीं है, हमारे भारत की नारी अपने आप में व्यक्तिगत सम्मान है, आप उनको सम्मान के साथ जिंदगी जीने के लिए रोजगार दीजिए। आप देखिए जगह जगह पे आपने एक तरफ सम्मान दे रहे, दूसरी तरफ नई नई शराब नीति ला के भट्टियों को खोलने और आते हटा के खुले में शराब पीने की जो सुविधा देख रखी है, आप कभी अंदाजा लगाइए कि घर में जाइए क्या हालत है आज। पति जो है उस 1,000 रुपये में से राशि मांगेगा, पीट पीट के उसको मारेगा कि दे पैसे मुझे शराब पीने के लिए। तो हम एक नई व्यवस्था को फिर से जन्म दे रहे, बात बात नकारात्मक आलोचनात्मकता की नहीं है, हम उस व्यवस्था की ओर अग्रसर हो जहां हम लोग अभी अमृत महोत्सव मना रहे। 75 साल हमारे आजादी के हो चुके और आज भी हमको आर्थिक रूप से संपन्नता प्राप्त नहीं हो रही है, आज भी एक बड़ा वर्ग गरीबी के नीचे जीवन जीता है। जी सर।
सर जी, जैसा कि अभी आपने आजादी के 75 वर्ष अमृत महोत्सव की बात की, तो हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आजादी में देश के कई स्वाधीनता सेनानियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, और चूंकि छिंदवाड़ा जिले की भी हम बात करें तो छिंदवाड़ा जिले में भी लाखनवाड़ी पूरे जिले में एक जंगल सत्याग्रह का केंद्र बिंदु रहा है, और जंगलों से कानून हटाने के लिए यहाँ के सेनानियों ने ब्रिटिश शासन का विरोध किया था। और जब आपने अमृत महोत्सव की बात की है, तो आज हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आज वह स्थल उपेक्षित पड़ा हुआ है, और इसके ऊपर शासन ने इस अमृत महोत्सव जैसे पावन पर्वों पर भी ध्यान नहीं दिया, इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे?
देखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि आजादी का पक्ष देखे और हमारे छिंदवाड़ा जिले के उन स्थलों को देखे जहां पे स्वतंत्रता सेनानियों ने इस देश की आजादी के लिए प्रयास किया, उसमें मातृशक्ति ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। लाखनवाड़ी इसका बहुत बड़ा महत्वपूर्ण केंद्र रहा है, मैं वहां से होके आया हूँ, बहुत सुंदर बहुत जबरदस्त स्थान है, लेकिन सरकार से कई बार वहां की बातें कहने के बाद भी आज भी वो क्षेत्र उपेक्षित है। आप सम्मान किस तरह से देना चाहते? आप स्वतंत्रता में भाग लेने वाले उन वीरों के परिवारों को देखिए, आप उनकी महिलाओं को देखिए, स्थिति क्या है। हमारा मध्य प्रदेश देखिए, पूरे भारतवर्ष में नारी उत्पीड़न में पहले स्थान पे है। हमको हमारे लिए शर्मनाक बात है कि समाज में हम लोग कानून व्यवस्था का भय पैदा नहीं कर पा रहे। नारियां, जब मैं संसद थाने की बात करूं, जब वहां पे एक महिला अपने न्याय के लिए गई है, तो आज तक उसको न्याय के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। पुलिस किस तरह से व्यवहार करते, मुझे लगता है पुलिस को सबसे ज्यादा इथिक्स पढ़ाने की आवश्यकता है। हम लोग अमृत महोत्सव की बात करते हैं, देखिए उससे अच्छा तो अंग्रेजों का शासन था कि जहां न्याय तो पाने के लिए हमको भले ही लाठी खाना पड़ा, गोली खाना पड़ा, लेकिन भ्रष्टाचार नहीं था। आज पुलिस थाना संसद में जाइए तो वहां आपके साथ किस तरह से व्यवहार होता है। वहां दुर्गेश सिंह जैसे पुलिस आरक्षक है जो बाहरी राज्यों से नंबरों के आधार पर मध्य प्रदेश में सेवारत है, आप वो सम्मानीय बात करती नहीं, अभद्र व्यवहार करते। आप बताए जनता के बीच और पुलिस प्रशासन के बीच में कैसे समन्वय बनेगा। यादव जो कि जो मजदूरी करते उनको थप्पड़ मारता है, दुर्गेश सिंह अच्छे नागरिकों के साथ बदतमीजी से बात करता है, आपको आपको सिर्फ सुरक्षा के अधिकार के लिए जिम्मेदारी दी गई, आप किसी के साथ अभद्र पूर्ण गाली गलौज करके बात नहीं। संविधान या IPC के कौन से धारा में ये बात कही गई है कि पुलिस वाले सामान्य नागरिकों के साथ बदतमीजी कर सकते, गाली दे सकते? ड्राइवर लोगों के साथ देखिए कितना अपमानित व्यवहार करते, जबकि वो एक मूल धारा है ड्राइवर लोग पूरे भारतीय अर्थव्यवस्था के। हर ड्राइवर अपराधी नहीं है, हर व्यक्ति अपराधी नहीं है, लेकिन दुर्गेश सिंह जैसे जो पुलिस थाने में पदस्थ है सांसद के, इतने बदतमीजी से बात करते हैं कि ऐसे लोगों को इथिक्स पढ़ाने की बहुत जरूरत है। हम सम्मान देने की बात करते हैं, लेकिन वही नारी जब सम्मान के लिए थाने में जाती है, अपने न्याय के लिए मांग करती है, तो पुलिस लोगों का क्या व्यवहार करता है? केवल पैसे देने से आर्थिक संबल देने से न्याय मिल जाएगा, सम्मान होगा? सामाजिक क्षेत्र में भी उसको सम्मान देने की आवश्यकता है, और मुझे ऐसा लगता है कि 1,000 रुपये देने से अच्छा है कि उसको सम्मान के साथ, सुरक्षा के साथ, कानून के समानता के भाव के साथ यदि चलने का मंत्र दिया जाए, उसको सुविधाएं दी जाए, और दुर्गेश सिंह जैसे जो पुलिस आरक्षक है संसद पुलिस थाने में, इनको यदि दंड न दिया जाए, तो हमारा ये आर्थिक रूप से संपन्न सम्मान देने का जो तरीका बहुत ही निहायत गलत मानते हुए। जी
सर जी, जैसे आपने अभी संसद पुलिस थाने का जिक्र किया, तो हम आपसे जानना चाहते कि ऐसी क्या घटना हो गई जिसमें संसद थाना पुलिस आपके माध्यम से चर्चाओं में?
देखिए साहब, हेलमेट चेक करना, मैंने ये चीज अनुभव किया कि आप अवैध रेत परिवहन होता है डंपरों का, बहुत स्पीड में जाते हैं, उन ट्रकों के पीछे RTO का नंबर तक की नहीं होता, उनके ऊपर आप कार्रवाई नहीं करते, और एक साधारण व्यक्ति बिना हेलमेट के चला जाए, और यदि वो मान लीजिए गाड़ी रोक, आप डंडा क्यों लगाते आड़ा उनके बीच में, आप साइड में लगाइए, उनको बोलिए साइड में लगाओ, आप उनके बीच में सामने आके खड़े जाते हो, डंडा लगाते हो, डंडा फंस गया रिंग में, कुछ हो गया, गिर गया, तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? और दूसरी चीज दीदी, वो व्यक्ति कोई अपराधी तो है नहीं, उसके साथ अच्छे से बात करना चाहिए। और दुर्गेश सिंह इतने जबरदस्त भयानक स्थिति वाले पुलिस आरक्षक है कि उनको तो मैं तो कहता हूँ एसपी से शिकायत भी हुई है, लेकिन उनमें कोई सुधार नहीं है। ऐसे लोगों को बर्खास्त कर देना चाहिए। सामान्य लोगों के साथ पुलिस के प्रति मतलब एक गलत भावना का निर्माण होते जा रहा है। आपका काम केवल सुरक्षा प्रदान करना है। आप एक जांच एजेंसी है, आप हेलमेट चेक करने के लिए यदि आप गाड़ी खड़ी करते हो तो बोलिए कि साइड में खड़ा करिए, आपको सामने नहीं आना है। मान लीजिए किसी प्रकार ब्रेक नहीं लगा, कुछ नहीं लगा, तो दुर्घटना हो गई, आप फिर उसके ऊपर एफआईआर, आप कहते हो कि पुलिस को देख के यदि गाड़ी नहीं रोकते तो चालान बनेगा, तो फिर आप यदि बदतमीजी से किसी के साथ बात करते हो, गाड़ी आप चाबी निकालते हो, आपको कौन से अनुच्छेद के तहत चाबी निकालने का अधिकार है? आप सीनियर व्यक्तियों के साथ भी बदतमीजी से बात करते, ये इनको ये सिखाना पड़ेगा। और ये पुलिस थाने की संसद की बात नहीं है, रेमंड चौक पे भी कई ऐसे पुलिस आरक्षक है जो बहुत बदतमीजी से ड्राइवर लोगों के साथ बात करते, ये प्रत्यक्ष रूप से मैंने देखा है। इनके ऊपर कौन सी धारा लगाई जानी चाहिए फिर? क्योंकि हर व्यक्ति को सम्मान से जीने का हक है ना, वो चाहे नारी हो या पुरुष हो, कोई भी हो। सम्मान केवल पैसे से नहीं होता साहब, समाज की सम्मान भी बहुत जरूरी है। और पुलिस इस व्यवस्था में बहुत बड़े सूत्रधार बनने जा रहे हैं कि वो अभद्रतापूर्ण व्यवहार करते। कई महिलाएं थाने में गई है, उनको बदतमीजी से बात करते हैं लोग, कई ऐसे घटनाएं सामने आई है। जी
सर जी, जैसा कि अभी आपने संसद के साथ साथ बोरगांव पुलिस चौकी की भी बात की लुधिखेड़ा थाना अंतर्गत, तो हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इस संबंध में जब पुलिस अधीक्षक महोदय से शिकायत हुई तो इस संबंध में कोई कार्रवाई हुई या नहीं?
कार्रवाई मैंने उनसे दो बार फोन लगा के बताया था कि दुर्गेश सिंह का स्वर कंट्रोल करिए आप, ये बहुत बदतमीजी से, और हमारा संसद जो है पुलिस प्रशासन के साथ बहुत अच्छा सहयोग करता है और शांतिपूर्ण माहौल है, लेकिन ये बाहरी राज्यों के जो लोग यहाँ मध्य प्रदेश सरकार में नियुक्त हुए हैं, ये केवल अवैध वसूली पे ध्यान देते साहब। ये लोग सट्टा चलाने वालों को कहते हैं कि आप राशि भेजिए, अब बताइए इनकी ड्यूटी सरकार जो पेमेंट दे रही उससे पूरा नहीं हो रहा क्या? आप हमको सम्मान मत दीजिए, हमको राशि मत दीजिए, हमको समाज के साथ सम्मान के साथ जिंदगी जीने का तो हक तो दो। और आपने जिन जांच एजेंसियों को नियुक्त करके रखे हैं वो लोग ड्यूटी कम, अवैध वसूली पे ज्यादा ध्यान देते हैं। सामान्य वरिष्ठ नागरिकों के साथ बदतमीजी से पेश आते, एसपी के साथ, एसपी से दो बार बात हो गई, वो कहते हैं कि मैं ठीक है देख लूंगा, कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए, लेकिन सुधार कहाँ हो रहा साहब? आज भी देखिए बहुत सारे डंपर ऐसे रहते जिनके पीछे नेम प्लेट लगी नहीं है, आप उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करते, क्यों नहीं करते? और एक सामान्य सा व्यक्ति हेलमेट न पहने, ठीक है अब हेलमेट पहन भी लिया तो तब भी तो शराब पी के डंपर वाले गाड़ी उसे उड़ा देते। अभी देखिए वो बोरगांव में वहाँ पे घटना हुई, एक लड़की को जिसको दुर्घटना में देहांत हो गया, वहाँ किसकी गलती थी बताइए? अब तो इनकी स्पीड कम है, अभी रात को जितने ट्रक चलते गोभी भर के जाती है यहाँ से, वो यूपी के ट्रक जाते, हमने कई बार वो ट्रक वालों को रोक के बोला कि भाई साहब हम भी लोग चलते हैं थोड़ा सा ध्यान से चलिएगा, पर कोई नियंत्रण नहीं है। आरटीओ अपनी गाड़ी खड़ी करते हैं बीच रास्ते में, मोहगांव रास्ते पे इधर पांडा रोड पे, बस पैसा वसूली का काम चलता है। लेकिन मैंने उनसे कहा कि साहब आप ये नंबर क्यों नहीं चेक करते, इनके गाड़ियों के पीछे नंबर नहीं है, बड़े बड़े अमरावती से ट्रक आते उनके पीछे नंबर नहीं रहता, इनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होती? वो सिर्फ हेलमेट वाले के 100 रुपये का चालान, 200 रुपये का चालान, 500 का चालान, और सबसे बड़ी बात बदतमीजी से पेश आते हैं। मोहगांव थाने से भी कई लोग वहाँ पे चेकिंग करते हैं, तो वो आप आड़ा क्यों आते हो? आपका अधिकार है भाई, आप रुकिए गाड़ी नहीं, कार्रवाई करिए, आप उसके सामने मत आइए। मान लीजिए उसने ब्रेक नहीं लगाया, कुछ हो गया तो आप तो उसके ऊपर मामला पंजीबद्ध करोगे, आप गाली देते हो तो आपके ऊपर भी तो मामला पंजीबद्ध होना चाहिए ना, आपको अधिकार नहीं है? कौन से आर्टिकल में है ऐसा कि आप गाली दे सकते हो पुलिस वाले? जी
आज मोबाइल वाणी के माध्यम से पूरे देश में आजादी का अमृत महोत्सव पर अपने विचार आप बीती अधिवक्ता मधुकर गायकवाड़ सर ने मोबाइल वाणी के माध्यम से कही है। हम आपसे यह भी जानना चाहेंगे कि जो आपने भ्रष्टाचार की बात की है, तो क्या भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए शासन ने किस तरह के कदम उठाने चाहिए?
देखिए शासन तो कदम बहुत सारा उठाता है, सबसे पहले जो मतदाता है ना उन्होंने सही लोगों को चुनना चाहिए, भ्रष्टाचार यहाँ से शुरू होता है। हम एक वोट के बदले 500 लेंगे तो फिर आप कैसे लोगों को चुन रहे हैं? आप गलत लोगों को चुन रहे हैं। यदि वो 500 दे रहा है आपको एक वोट के बदले तो वो तो 50 लाख 5 करोड़ कमाएगा ना, तो भ्रष्टाचार तो यहाँ शुरू होता है। तो उसके लिए कुछ नहीं, सबसे पहले मतदाता को अपने अधिकार को समझना होगा कि वो मालिक है, हम चंद रुपयों के लिए अपने मताधिकार का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, हम गलत लोगों को चुनेंगे, तो वो गलत लोग राजनीति में आते क्यों हैं? उनका उद्देश्य क्या है? उनका सेवा भाव उद्देश्य है क्या? वो केवल अपने अवैध कारोबार को संरक्षण देने के लिए राजनीति में आए। आप बताइए, हम लोग को सरकार 1000 रुपया देके मदद कर रही है, पर मुझे ये, मैं एक सवाल इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि राजनेता ऐसी कौन सी नौकरी करते हैं जिनके पास करोड़ों का कारोबार है? ये कौन सा व्यवसाय है? इनके पास कौन सी नौकरी है? इनके पास करोड़ों की प्रॉपर्टी है। मैंने कई ऐसे नेताओं का जो RTI में जो जानकारी मिली है, तो इनके करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी, इनके पास ये पैसा आता कहाँ से? और वो मतदाता जो मालिक है उसको 1000 रुपए में काम चलाना पड़ रहा है आपकी मदद से, लेकिन आप उन लोगों को, उनको भी तो पूछिए कि ये पैसा आता कहाँ से इनके पास? बच्चों के पास फीस भरने के लिए, फॉर्म के लिए पैसा नहीं रहता, 500-500 रुपए उनको कई परीक्षा एक साथ ले रहे हैं आप, 4-4 साल वैकेंसी नहीं आती। अब भड़मार कर दिया आपने चुनाव आते बराबर। ये चुनावी हथकंडा मत अपना, ये हमारा राज्य वेलफेयर स्टेट है, वेलफेयर स्टेट में हमको बहुत अच्छी व्यवस्था का संचालन करना चाहिए। अब वो जनता वो नहीं रही है, अब जनता जागरूक हो गई है, उसको अपने वोट की कीमत भी समझने लग गई है और लोगों की नीतियां भी समझ में आ रही है, उनकी मनस्थिति वो लोग समझने लग गए। इसीलिए आपने देखा होगा कि अब परिवर्तन की लहर हमारे देश में स्पष्ट दिखाई दे रही है। जी
सर, आज हम इस अवसर पर आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि शराब नीति पर आपकी क्या राय है?
शराब नीति में आपने आते तो बंद करा दिया, लेकिन वो जो शराब पीने वाले लोग खुले में शराब पीते, अभी देखिए मैं जहाँ रहता हूँ साहब, वहाँ पे रात को लोग खेतों में बैठ के शराब पीने लग गए, बोतलें सड़कों पे फेंकते हैं, और शराब पहले तो बैठ के वहाँ पी लेते थे, अब वो पी के आसपास पी के निकलते हैं तो सड़कों पे झूमते हैं। कई बार हम लोग रात में रास्ते में आते हैं तो हमको कई बार वो अंधेरे में दिख नहीं पाते, तो देखते हैं तो शराब पी के लहराते हैं। अब हर जगह जहाँ पे भी शराब की दुकानें हैं, चाहे वो बजाज जोड़ के ऊपर जो होटल है वहाँ की बात हो, या फिर पीपला नारायणवार की बात हो, मोहगांव की बात हो, मोहगांव रस्ते पे स्थित संसद की शराब की भट्टी हुई, या बोरगांव रेमंड के पास जो है वहाँ की देखो, तो आपके डोलते हुए दिखते हैं, नागिन की तरह रास्ते से चलते हैं, और कई बार बड़ी दुर्घटनाओं को निमंत्रण मिलता है। और सबसे बड़ी बात है कि शराब से कई परिवार बिखर गए साहब, कई बच्चों के परिवार में ऐसी स्थिति है बच्चों की, उनके पास फीस के लिए पैसा नहीं रहते। अरे आपको ऐसा लगता है कि सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत है, और आप शराब भट्टियों का जो ठेके मिल रहे किसको मिल रहे? राजनीति में जो लोग बैठे हैं उन्हीं को मिल रहा है, राजनीति में जो लोग हैं उन लोग राजनीति में आए काय के लिए? इसीलिए आए। तो मैं चाहता हूं कि ये शराब नीति में आप बंद क्यों नहीं करवाना चाहते? आप कोई दूसरा उपाय ढूंढे पैसा कमाने का? आप देखिए कितने परिवार बर्बाद हो गए, फीस नहीं है बच्चों के पास पढ़ने के लिए, माताएं रात दिन पीटती रहती है, थाने में रिपोर्ट जाओ तो वहां कुछ और बातें होती है। आप शासन चला रहे कि व्यवस्था को संभाल रहे कि नहीं संभाल रहे, कुछ नियंत्रण ही नहीं लगता। तहसील ऑफिस में जाओ तो बगैर पैसे दिए वहाँ काम नहीं होता, और आपने यदि नहीं दिया तो फिर पता नहीं कितनी सारी बातें आपको चलानी पड़ती सुननी। मैं खुद अपने प्लॉटिंग के समय देखा, वहाँ एक पंजीयक महोदय बैठे हैं, बड़े धार्मिक बनते हैं, लेकिन उनकी जो लिस्ट बनती है उसमें वो जो जो अर्जीनियस होता है उसके माध्यम से पैसा लेता है, और मैंने तो खुद अपने पैसे वापस ले लिया, तो क्या प्रत्येक व्यक्ति ऐसा वापस ले सकता है क्या? उनकी पूरी सेटिंग है। तो मैंने उनसे पूछा किस बात का पैसा लगता है, तो उन्होंने कहा कि मंत्रियों को पैसा जाता है, अधिकारियों को पैसा जाता है। तो मैंने कहा बताओ किसको जाता है? तो ये व्यवस्था यदि हमारी प्रशासनिक व्यवस्था, शासन व्यवस्था में यदि मौजूद है साहब, तो आप 1000 रुपये दे के हमको कौन सा सम्मान दे रहे हो? कौन सा आर्थिक मदद कर रहे हैं आप? जी
सर जी, मेरी भी आवाज सुनो कार्यक्रम में, आपने आज मन की बात, अपने अंदर की बात खुलकर कहिए। हम आपसे अंत में इतना जानना चाहेंगे कि आप मतदाताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे?
मतदाताओं को मैं ये साफ साफ कहना चाहता हूँ, यदि आप अपने भविष्य को सुरक्षित देखना चाहते हो, अपने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित देखना चाहते हो, और आप अपने आप को सुरक्षित देखना चाहते हो, योग्य सक्षम और अच्छे आचरण वाले लोगों को चुनिए। पैसा देके, पैसा लेके वोट नहीं देना है, इस बात पे ध्यान रखना। आप अपने मताधिकार के महत्व को समझो, योग्य लोगों को चुनो। जब आप योग्य लोगों को चुनोगे तो ही अच्छी सरकार का निर्माण होगा। अभी देखिए हमारे संसद जो है इस बार की, उसमें 144 लोग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से अपराधी है। ब्रजभूषण शरण उसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि लड़कियां सड़कों पे गिड़गिड़ा रही, अपने लिए न्याय मांग रही है, रिपोर्ट में लिख के आया, सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना पड़ रहा है। जब हम इस तरह से लोगों को चुन के भेजेंगे तो उम्मीद मत रखिए कि आपकी बेटियां सुरक्षित होगी, ये नरभक्षी उसको बख्शेंगे नहीं। और इन नरभक्षियों से भी बचाना है देश को, विकास को बढ़ावा देना, अपने बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा की व्यवस्था के निर्माण करना है। तो 6 जनवरी 2024 में जो चुनाव होगा, या लोकसभा का हो चाहे विधानसभा का चुनाव हो, योग्य अच्छे पढ़े लिखे और अच्छे लोगों को चुनिए। अभी देखिए पंचायत में ऐसे ऐसी मातृशक्ति, ऐसे ऐसे लोगों को चुना है कि उनका सारा काम जो है पतिदेव करते हैं। मुझे ऐसे ही नहीं लगता कि चुना हमने किसको है और काम कौन कर रहा है। अधिकार जानकारी का अभाव, अभी देखिए हमारे पीपला में शराब भट्टी के लिए हमने आवेदन लगाया था, प्रस्ताव पास हुआ, अभी तक कोई डिसीजन नहीं हुआ। सबसे बड़ी बात, हमने सीएम हेल्पलाइन में शिकायत की है शराब भट्टी हटाने को लेकर, अभी तक उसका कोई निराकरण नहीं आ रहा। तो आप बताओ हमको कौन सा सम्मान दे रहे हो? केवल 1000 रुपए का लॉलीपॉप दे के आपको लगता है कि आप सम्मान दे रहे हैं हमको? व्यवस्था में, समाज में सुधार की व्यवस्था प्रक्रिया चलिए, इसमें कोई राजनीतिक पार्टियां ध्यान नहीं देती। समाज टूट रहा है साहब, और उसमें शराब की दुकानें और शराब के ठेकेदारों का जो आतंक है वो बहुत कारगर है। इस पे नियंत्रण नहीं हुआ तो ये 1000 रुपए का जो आर्थिक सम्मान, हमारे लिए कोई सम्मान नहीं होगा, ये अपमान होगा। जी
हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका कि आपने आज अपने साक्षात्कार में महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा के साथ साथ ही शासन के आंखें खोलने का काम आपने किया है। निश्चित ही शासन ने इस ओर ध्यान देना चाहिए और इसमें सुधार करना चाहिए। आपका पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद।
जी जी नमस्कार साहब, धन्यवाद। ओके।